نعرض المصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفاطمة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، کبھی کسی طالب علم کو آپ محنت کرتا دیکھیں، کس قدر محنت کرتا ہے وہ، لائبریری میں جاتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، رات کو جاگتا ہے، اور مطالعہ کرتا ہے، بہت سی چیزوں کی قربانی کرتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے صرف ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ جب میں امتحان میں بیٹھوں تو امتحان کے اندر کامیاب ہو جاؤں. بس اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا کامیابی یا ناکامیابی، یعنی پاس یا فیل. آج تک ہم کسی اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو یہ کہتے نہیں سنیں گے کہ جی میں تو محنت اس لیے کر رہا ہوں فیل ہو جاؤں، کبھی نہیں. کمزور سے کمزور طالب علم ہوگا، اس کا بھی مقصد اور ایم یہ ہوگا کہ میں پاس ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں. ہم سب جو ہیں اسی حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہاں ایک امتحان میں مبتلا کیا ہے، ایک آزمائش کے اندر. قرآن کی آیتیں ساری، اور ہم سب جو ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور سب کا مقصد یہی ہے ایک، کہ ہم کیا ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، پاس ہو جائیں. بس ایک ہی مقصد، جو بھی آدمی لگا ہوا ہے اسی ایک مقصد پہ لگا ہے. کوئی نہیں کہے گا اس طالب علم کی طرح کہ جی میں تو فیل ہو جاؤں، سب نے یہی کہنا ہے جی ہم پاس ہو جاؤں. خیر وہ جو طالب دنیا کا طالب علم ہے، اگر وہ فیل بھی ہو گیا تو اس کو پھر چانس مل جاتا ہے، سپلیمنٹ دیتا ہے، دوبارہ اپیئر ہو جاتا ہے، امپروو کر لیتا ہے اپنی ڈگری کو یا جو سال میں بھی ہے. لیکن یہ تو ایسے فیل ہوگا آدمی، اس میں اگر فیل ہو گیا تو پھر چانس ہی کوئی نہیں، پھر تو چانس ہی کوئی نہیں کہ دوبارہ کوئی چانس مل جائے کہ جی میں دوبارہ امتحان دے دیتا ہوں پھر محنت کر لوں گا. یا افسوس نہیں ہوگا. لیکن اس میں جو امتحان ہم دے رہے ہیں وہ تو بدرجہ اعلیٰ درجے پر بہت زبردست امتحان ہے. ایک دفعہ جو فیل ہو گیا، اس میں اعلان ہو گیا اس کا کہ بھائی یہ فیل ہے، یہاں جو فیل ہو گیا تو بھائی کہیں جاب نہیں ملے گا اس کو، اور کیا ہوگا، کسی اور کام کر لے گا، دھندا کر لے گا. وہاں جو فیل ہو گیا وہ تو بہت خطرناک معاملہ ہوگا دوست. وہاں جب اعلان ہو گیا اگر اللہ معاف فرمائے گا یہ دھندا فیل ہو گیا، وہ تو ہمیشہ کے لیے فیل ہو گیا. اور فیل ہونے کے بعد اس کا جو حال ہوگا وہ بہت خطرناک ہے، ڈائریکٹ جہنم. بہت زبردست رزلٹ جیسا نکلتا ہے نا اخباروں کے اندر، رول نمبر، سب کے ہمارے رول نمبر لگے ہوئے ہیں، اللہ کی کتابوں میں نا سب کے رول نمبر لگے ہوئے ہیں، یاد رکھیں. پڑھا کریں، قرآن کو سمجھا کریں، بہت چیزیں بتاتا ہے قرآن، بہت بڑی بڑی چیز ہے. ہم تو مدوش ہیں اپنی زندگی کے اندر، خبر ہی کوئی نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں کرنا، کدھر جا رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، اپنے اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں. یہ بس ہمارا زندگی کا مقصد ہی ہے، کسی بات پہ رو رہا ہے کوئی، کسی بات پہ رو رہا ہے. میرے بھائیو، کبھی کسی جاننے والے کا مشاہدہ کر لیا کریں، جس سے جنازہ پڑھایا جاتا ہے तो देखा करेंगे कहाँ जा रहा है, कल रात ये कहाँ सोया था, इसका बिस्तर कैसा था, इसके इर्द गिर्द कौन कौन लोग थे, कैसे कैसे प्यार करने वाली हस्ती थी, कितने चाहने वाले लोग थे इसके साथ। और आज जब हम इसको छोड़ने जा रहे हैं तो इसका बिस्तर वो बिस्तर नहीं है, एक अजीब गरीब किस्म का बिस्तर है, डब्बे में बंद कर दिया जाता है नंगा करके और मिट्टी में फेंक दिया जाता है। इसलिए अब फिर पता चलता है वहाँ पर कि कामयाब कौन है और नाकाम कौन है। बहुत सीरियस मामला है, वेरी सीरियस, बहुत ज़्यादा कंसर्न है इसको, बहुत सोचने वाली बात है, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ से सबसे बड़ी सोच ही है इंसान की, सब बकवास है, बाकी चीज़ पास हो जाए अल्लाह हमारा जब रिजल्ट निकले तो हमें कहते हैं तुम पास हो तो कामयाब हो, उसके कहते हैं कामयाब। कितना बड़ा इम्तहान है हमारे सामने, दिन हमारे बहुत थोड़े, जिंदगी बहुत थोड़ी है, काम बहुत करने वाले हैं। सबसे बड़ी तो इसी की तैयारी जो हमें करनी है। लेकिन अल्लाह सुबहाना तआला ने पर्चा जो था ना ये आउट कर दिया। होता है जब कभी पर्चा आउट हो जाए तो मजे लग जाते हैं स्टूडेंट के, लो जी नंबर, पर्चा तो आउट हो गया, अब पता चल गया कि ये सवाल आए हैं, बस रगड़ो इन सवालों, तैयारी कर लो, आसान हो जाता है पर्चा। और फिर तो समझो डेफिनेटली कामयाब है, उसको पता है कि तीन सवाल आने और जना पर्चा आउट हो गया, डेफिनेटली तीन सवाल आ रहे हैं, बस फिक्र ही नहीं होती उसको, वो तीन सवाल ही याद करने हो, सारी किताबों को ढेर की तरफ रख दे, तीन सवाल हैं किसका ख़त्म, वक्त लगा दो तीन सवालों पे, तो वो तो आधे घंटे में हम याद कर लेंगे उसको पास। अल्लाह पाक ने कितना बड़ा इनाम दिया हमें सुभानअल्लाह इस कुरान की शक्ल में। और इस कुरान के अंदर अल्लाह सुभानअल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया है, पर्चे को आउट किया कि तुम किस तरह कामयाब हो सकते हो। अल्लाह ने इस कुरान के अंदर ऐलान फरमाया कद अफलहल मोमिनून, पढ़ते ना कितना यहाँ आयत पढ़ी है, कद अफलहल मोमिनून, भाई फला के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चीज़ है, मोमिनून, ईमान की ज़रूरत है। अब उस रिजल्ट के अंदर ऐलान होना चाहिए कामयाबी का, सबसे पहले क्या इंसान को होना चाहिए, ईमान, पहली चीज़ तो ईमान है, नहीं खाली ईमान से काम नहीं चलेगा। आगे बताया कद अफलहल मोमिनून के लिए है, पास का रिजल्ट निकलेगा, अल्लज़ीना अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम, दूसरी स्टेज ईमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ईमान तो दिया है हमें, मौजूद है अल्लाह के फजल से, यकीन भी है, शुक्र अल्लाह का, एक रास्ता तो मिल गया ना हमें, अल्लाह का बहुत शुक्र है अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक मंजिल जो सबसे बड़ी मंजिल थी उस मंजिल से मेरे मौला ने निकाल दिया। करोड़ों अरब लोग जो इस मंजिल पे फंसे हुए हैं, अभी इस तजब्ज़ में फंसे हुए हैं, सब कदर देखनी है तो उनके तरफ झांक के देख लिया करें, कभी आप गुजरते हैं ना इधर जब तो देखा करें दुनिया के तमाशे, फिर जोर से कहा करें शुक्र है मेरे मौला तेरा, लाख लाख शुक्र है, टूटा फूटा जो भी दिया है लेकिन ईमान है अल्लाह के फजल करम से, कितनी बड़ी दौलत है कि पूरी फलाह की सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ से दी गई वो क्या दिया है, ईमान, कद अफलहल मोमिन, आ रही बात समझ या नहीं आ रही, तो वो तो मिल गया अल्लाह के फजल से, और इस जब मिल जाए तो उसकी कदर भी है, कदर का तरीका मैंने आपको बता दिया कि शुरू मुशाहदा किया करें और खौफ दिल में रखना चाहिए कि अगर हम ये होते हमारा क्या हाल होता, कहाँ जाते हम, कितना अल्लाह का करम है कि अल्लाह सुबहान तआला ने कितना बड़ा करम फरमाया है कि हमारे सीने के अंदर ईमान की शमा जो रोशन फरमा दी है। ना कदर नहीं होना चाहिए कि ईमान के साथ फजूल बातें करनी, फजूल चीज़ें हरकतें करनी, खुदा किधर है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, खुदा को हम कैसे माने, खुदा के साथ हम कैसे ताल्लुक, अल्लाह ताला अच्छा ये क्यों नहीं करते, अल्लाह ताला ने वो क्यों किया है, करते ही नहीं करते, अच्छा भाई हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला से ये क्यों करते हैं, अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों नहीं कर दिया, अल्लाह ताला ये कर देता तो क्या होता, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ये क्यों हो रहा है? ये सब ना कदरी ना शुक्री का मामला है, याद रखें। अल्लाह ताला कहता ठीक है, तुझे फर्क नजर नहीं आता इनमें और तुझ में, कितनी बड़ी चीज मैंने तुझे दे दी है, कम से कम तेरा बेसमेंट बन गया कामयाबी का, इनका तो है ही कोई नहीं बेसमेंट बेचारों। तो कभी इस फजूल बात के अंदर इंसान को नहीं जाना चाहिए, ये फजूल चीज है। तो पहली चीज क्या है? कद अफलहल। फिर क्या क्या है? अल्लज़ीन हम फी सलातिहिम खाशिऊन। दूसरी चीज क्या बताई है कामयाबी की? कुछ नहीं बताया अल्लाह पाक ने, कुछ नहीं कहा। दूसरा बताया ईमान है और कामयाबी का नारा लगाना चाहते हैं तो दूसरी क्या चीज है? नमाज। हुआ ना पर्चा आउट, मुश्किल हुआ कामयाबी? बताएं, सबसे बेवकूफ जाहिल नालायक इंसान वो हो कि जिसको किसी चीज का पता चल जाए कि इसके जरिए मुझे कामयाबी मिलनी है। एक स्टूडेंट है, उसको पता लग जाए कि ये क्वेश्चन आना है और क्वेश्चन उसके सामने मौजूद हो और वो फेल हो जाए, तो मैं कहता हूं उससे बदकिस्मत स्टूडेंट कोई नहीं हो सकता। तभी जो जहन्नम में वो लोग हैरान होंगे सोच के कि जहन्नम आ कैसे गया शख्स, ईमान इसके पास था, पर्चा आउट हो चुका था, अल्लाह ताला ने सब कुछ बता दिया था इसको। बताएं, सोचें हमारे अपने हालात को सोचें, और फिर ये जहन्नम की तरफ आ रहा है। चलो हम तो थे ही, पहली स्टेज भी खत्म हो गए, हम तो सब गए ही नहीं, इनके तो इनके पास तो ये दोनों चीजें मौजूद थी। तो दूसरी चीज क्या है? सब भूल जाओ, ईमान के बाद किस पे मेहनत करनी है हमने, छोड़ दो सब चीजें, किस पे करनी है? बस जेब में डाल लिख के आ गए कि मेरी कामयाबी का राज जो है वो क्या है, गुमे ना इधर दो गर्दन इंसान की, बिल्कुल भी किसी तरफ ना जाए, बस दिल पे लिख ले के भाई कोई चीज भी मुझे कामयाब नहीं कर सकती, सबसे पहले अल्लाह पाने, ईमान के बाद जो कहे वो क्या है? नमाज। मुझे अब जनाब पहली स्टेज तो अपनी नमाज जो है, अब यहां आप देख लें कि अल्लाह ताला तो ये ऐलान फरमा रहा है कि तुम कामयाब होगे जो नमाज पढ़ेगा, और आज हमारी उम्मत का हाल देखें, अल्लाह अकबर, कि नमाज का हाल क्या है। इतनी जरूरी चीज है नमाज, आप ये देखें कि जब भी कोई मुसलमान किसी बस्ती में गया, किसी शहर में गया, किसी मुल्क में गया, तो सबसे पहले जो चीज़ बिल्डिंग बनती है वो क्या बनती है? मस्जिद बनती है। ऑटोमेटिकली ईमान के साथ कनेक्शन ऐसा है ना मस्जिद का, क्योंकि असल रास्ता यही है हमारे अल्लाह तक कामयाबी का। तो सबसे पहले तीन चार फिक्र करने वाले आदमी जो भी होंगे, आप इस मुल्क में आए, किस तरह स्टार्ट हुआ है सारा काम, मुझे पुराने तो बेचारे चले गए ना, उनसे पूछें जो फैक्ट्री में काम करते थे, इधर करते थे, तो उनके सबसे पहला इंतखाब यही हुआ कि भाई सबसे पहले जो कुछ भी करना है, बेचारे जो कुछ कमाते थे, बड़ा सख्त वक्त था, लोग काम करते थे फैक्ट्री में, पैनी में मिलता था, तो पता नहीं क्या नाम था उस वक्त, पौंड शौंड का भी नाम भी डिफरेंट हुआ हुआ था, क्या कहते थे उसी, है जी, शिलिंग था, वो भी तांबे का होता था बिल्कुल बना हुआ, उसमें पता नहीं अजीब सी शिकल होती थी, वो उसको चूम चूम के रखते थे, उसी को फिर वो इंडिया और पाकिस्तान भेजते थे, उससे वहाँ बिल्डिंगें बनती थी, वो इतना था, एक तांबे का खिट्टा था। आज तो माशाल्लाह हारू छे खूब जेब खड़कती है, तो माशाल्लाह अजीब अजीब किस्म के नोट जेब में नजर आते हैं, बाज तो नोट ऐसे देखे भी नहीं, तो किस किस्म के नोट हैं, अजीब किस्म। तो ये क्या है? उन लोगों ने जो जब आए तो कितनी मेहनत की उन्होंने, ये जो आप बैठे हैं आप, ये मस्जिद फलां जिक्रिया मस्जिद, ये मस्जिद, ये मस्जिद, माशाल्लाह जैसे ये मस्जिद, वो तसव्वुर था, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला के कानून बन गए कि जहाँ ईमान जाएगा वहाँ नमाज जाएगी। चांद पे भी जाएगा ईमान वाला, चांद पे भी मस्जिद चली जाएगी। क्यों भाई? कल एक आदमी खड़ा होकर शिकायत करे अल्लाह ताला, तो तू कह रहा था फला तो नमाज में, तो हम नमाज कैसे पढ़ते, हमें तो मस्जिद का पता ही नहीं था। नहीं, तीन चले जाएं, तीन मुसलमान कहीं चले जाएं, सबसे पहले उनको फिक्र क्या होगी, यार कोई थोड़ा जगह ले लें, नमाज इकट्ठे पढ़ लिया करें, अजान, सबसे पहले फिक्र उनको ही होती, टूटे फूटे किसने, अल्लाह ने ईमान के साथ ही ताल्लुक रखा ना, जैसे आप खाना खाते हैं सबसे पहले फिक्र क्या होगी, कोक की बोतल जरूर होनी चाहिए, प्यास लगे ना लगे, एक गिलास जरूर रखा हो भाई ऑरेंज का, क्यों तू पीता है? बस वो पानी, जिस तरह खाने के साथ पानी और ऑरेंज जरूरी है, इसी तरह ईमान के साथ मस्जिद का ताल्लुक बहुत जरूरी है। ये जो हम देखते हैं ये मजबूरी है हमारी, जो मस्जिदें बनाते हैं ना, ये अल्लाह ने मजबूर किया है कि तुम्हें काम करना है, तुम करोगे कैसे? कैसे निकालता है आदमी पैसे, जमीन खरीद लेता है आप, वैसे उसको पैसे तो कहीं खर्च नहीं करेगा, घर में नहीं करेगा, छोड़ो बीवी बच्चों को, लेकिन मस्जिद का मामला तू निकाल देगा पैसे, खुद ही कह देगा नहीं मैं यहाँ मस्जिद बनानी है, मैंने ये काम करना है, मैंने मस्जिद बनानी है, मस्जिद तक मदरसों के टॉपिक नहीं मैं कह रहा, मस्जिद कह रहा हूँ। ऐसा ईमान के साथ मुंसलिक कर दिया अल्लाह पाक ने, इसमें ये साफ निशानी उतारी है, कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम। तो पहली चीज़ तो ये कि नमाज पढ़नी चाहिए, कोई औरत कोई मर्द जो हद अल्लाह पाक ने नमाज की दी है, अगर वो नमाज से गाफिल है तो खुद अपने जहन्नुम गड़ा दुनिया में खोद रहा है, दुनिया में खोद रहा है। कितनी बड़ी फिक्र एक अल्लाह वाले को अल्लाह ने पैदा किया, हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, कहाँ पैदा किया, कैसे खितने पैदा किया, उनकी जबान में भी लुकनत थी, कोई शौक भी ऐसा नहीं था, जैसे अल्लाह का काम नहीं होता है। उनसे ये काम लिया कि जो ईमान के साथ लगने वाली चीज़ है ना, तू सिर्फ उस पर ही मेहनत कर, बस नशा चला दिया उनको नमाज। अब हर जगह जो मेहनत पूरी दुनिया के अंदर फैली, नमाज पे मेहनत है, देखता है बड़ी सब जो भी अकड़ को भी नमाज बाहर जाएंगे कुंडी करेंगे नमाज, वो ऐसा जरूर तारी कर दिया अल्लाह पाक ने उस अल्लाह वाले की शान से, इलियास रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ने दिया ना एक, उनकी जबान में कुवत आ गई, उनकी बातों में कुवत आ गई, उनके अंदर वैसे ही धक्के खाए, गालियाँ खाई, बुरे बुरे हालात हुए उनके, नहीं भाई नमाज पढ़ो, नहीं भाई नमाज पढ़ो, पूरी दुनिया के अंदर ऐलान फरमा दिया। तो नमाज सबसे बड़ी चीज़ है, हमने अपने घरों में देख रहे हैं कि इसके बगैर तो ये समझ लो कि अगर बेनमाजी घर है, औरत और मर्द हैं, तो ये फैसला कर दिया हमने खुद ही कि हमारे घर में ना रहमत आएगी, ना फजल आएगा, ना रिजक आएगा और ना शैतान भागेगा, ये हमने फैसला करके लटका दिया बाहर, ये तो हो चुका, पक्का फैसला हो गया कि भाई ये तो हमारे घर के जो है ना हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे बेनमाजी है इस घर के अंदर और ये चीज़ हमारे घर में आ जाएंगी, वो तस्वर भी ना करें, नहीं जी बड़ा बस करते रहो, लेकिन अल्लाह की तरफ से फैसला हो गया मनुसत का नहुसत का, किसी बस्ती में है उस बस्ती का फैसला हो गया कि इसको तबाह करना है मैंने। एक चीज जो है नमाज, उसकी वक़्त इतनी बड़ी है, और जहां नमाज आ गई घर के अंदर पांच वक्त नमाज पढ़ी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बस समझो सब कुछ रहमतें भी आ गई, रिज़्क भी आ गया, फजल भी आ गया, करम भी आ गया, सब कुछ अल्लाह की तवज्जो उस पर आ गया, नहीं बात समझे? ये है नमाज, इतनी बड़ी चीज़ है। अब हम भी अपने अपने गिरे वालों में झाँकें कि भाई नमाज पढ़ना अल्लाह ने जो हुक्म दिए है हमारी चीज़ है। अब ईमान, ईमान के बाद क्या है? नमाज। लेकिन खाली नमाज नहीं कहा, कहा अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून, तीसरे दर्जे पे आ जाते नमाज पे खाली बख्शिश नहीं होगी, अल्लाह पाक कहता है, ये भी सुन लें, खाली नमाज का जो चक्कर है इस पे भी फला नहीं होगी, किस नमाज पे होगी? खाशऊन, बात समझ आ गई? अब जरा गर्दनें ठीक होंगी हमारी, पता लगेगा, पूरी तैयारी के पेपर दिए अल्लाह पाक ने, ये गफलत में मत रहना, किसी हाल के अंदर मत रहना, मैंने कुरान के अंदर जगह जगह तुम्हें बताई थी, कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। नमाज पे तो मेहनत हुई, बुला रहे हैं सबको, अब असल चीज नमाज के साथ क्या है? खाशियत। खाशियत किसको कहते हैं? खुशु। ये है असल चीज नमाज की, कि जिसकी नमाज होगी ईमान होगा, ईमान के साथ नमाज होगी, और नमाज भी जो खुशु वाली होगी उसका मैं ऐलान करूंगा तो वो कामयाब है, दाएं तरफ को चले जा, जन्नत तेरी है। जो ईमान भी लेके आ रहा है, नमाज भी लेके आ रहा है, लेकिन खुशू नहीं है, ऐलान किया जाएगा ये फेल हो गया, थर्ड क्लास है, इसको ले जाओ उधर माई तरफ, अजी अजी कब चला चला जा, कुरान में बताया था, ऐलान किया था। हम नमाजी तो हो गए हम अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान वाले हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो खाशियून कहाँ से आए? कितनी बड़ी दावत है कुरान की, ये कहाँ से आए? अल्लाह ताला ने ईमान की दावत के लिए भी लोग पैदा करते, भाई ईमान ईमान लाओ, तो हाई दर्जे पर लोग पैदा करते, भाई ईमान जो तबलीग करते ईमान लाओ, फिर नमाज के लिए भी अल्लाह ने आदमी पैदा कर दिए, जमातें पैदा कर दी, जमात क्या करो? नमाजी बनाओ। तो अल्लाह सुबहान तआला ने खाशियून के लिए भी इंसान पैदा किए हैं, जैसे रिसेंटली जिससे मेरा ताल्लुक हज़रत अली मुर्तज़ा रहमतुल्लाह, वो क्या करते थे, खाशियून का काम करते थे। ये जो काम है, तीसरा काम जो इम्पोर्टेंट है, खाशियून, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये जब तक आदमी इस पर हम मेहनत, किस तरह हर पर मेहनत करनी है, इस पेपर का हमने मेहनत नहीं की, क्या वजह भाई खाशियून पे मेहनत किस तरह की जाए, खाशियून कहाँ से आए, इस तरह नहीं आएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में नहीं आएगा। सुने एक हदीस, अजीब हदीस, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, अजीब बात कही है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जैसे इंसान नीचे बैठ के बात नहीं करी, मुसल्ले पे नहीं की, किधर आ गए, मिंबर पे आ गए, यहाँ भी नहीं बैठे, ऊंची मिंबर पे बैठे, ऊंची मिंबर पे बैठे, बैठ के आज क्या ऐलान होगा भाई, उमर फारूक की जबान से क्या चीज़ निकलती है, पूरी उम्मत सुन ले इस बात को। उमर का, हज़रत उमर का ये कौल नकल कर रहा हूँ आपको, होश संभाल लें हम सब। फरमाया, है भाई मुसलमानों, इस्लाम के ऊपर इंसान बूढ़ा हो जाता है, ये लफ्ज है, क्या हो जाता है, गिट्टे गुड्डे सब खत्म हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है इस्लाम पे, लेकिन उसकी नमाज कामिल नहीं होती, इस तरह चला जाता है। अब तो पक्की होगी बात, कुरान की नहीं हुई कि भाई कोई काम नहीं मिलेगा जब तक क्या नहीं होगा, नमाज हमारी, नमाज नहीं वो नमाज जिसका बता रहे हो कि इस्लाम पर बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी कोई नमाज कामिल नहीं होती, मुकम्मल नहीं होती। हैरान हो गए सारे साहब, कहने ये क्या बात, सब डर गए, यही तो भाई हम तो वाकई बूढ़े हो रहे हैं, जा रहे हैं, हमारी नमाजों क्या हाल हो, कि इसका मतलब हम तो समझे नहीं, हजरत इसका मतलब तो बता दें, नमाजें हमारी कामिल नहीं हुई, क्या मतलब। फरमाया इसका मतलब यह है कि उसकी नमाज के अंदर खुशू नहीं होता, आजजी नहीं होती और तवज्जा नहीं होती अल्लाह की तरफ, जिसकी नमाज में ये तीन चीज़ें नहीं होती वो नमाज कामिल नहीं होती और वो नमाज नहीं होती। तो इसका मतलब ये होती ही होगी, जो ये शर्त लगाई है नमाज के साथ होती होगी ना, होती तो है, लेकिन हम मेहनत नहीं करते, भाई नमाज पढ़ा है, हम नमाज पढ़ा है, भाई हो जरा दीन को समझा करो, दीन की तरफ तवज्जा करो, टर्ख नहीं चलता दीन के अंदर, इस्लाम है ये और ये है, दीन है अल्लाह का, सच्चा दीन है, और हमने अल्लाह के हुजूर पेश होना है। सोचो तो सही कि इस इबादत पे तनख्वाह मारना और उस पर तवज्जा ना देना, इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, अल्लाह ने इसका पूरा एक एक जुज पेश किया है, इतना बड़ा सहाबी, सहाबी और अल्लाह के नबी ने तो क्या खूबसूरत देखें मिसाल दी है इसकी। कहते हैं किस कामयाबी की बात करते हो, इस नमाज की कामयाबी, उसकी तो बात छोड़ो, कामयाबी खुशु की नमाज की दो रकात की मैं बात करता हूँ, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कुरान में, सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि दो रकात की मैं बात करता हूँ, बाकी बात तो तुम छोड़ो। दो रकात कोई शख्स अगर खुशु के साथ पढ़ ले, जिसकी तारीफ उमर ने की है, जिसमें खुशी हो, आजी हो और तवज्जो अल्लाह की तरफ हो, दो रकात कोई ऐसा पढ़ता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आखिरत की बात तो बाद में, मैं दुनिया की गारंटी देता हूं कि वो शख्स पढ़ने के बाद ऐसा होता है कि जैसे कि माँ के पेट से अभी निकला है, गुनाह का तसव्वुर भी नहीं होता उसको जिस्म पे। इतनी कीमत है इस नमाज की। उधर हजम फरमा रहे कि बूढ़ा हो गया तू, ठोकरें मारता हुआ, मस्जिदों में भागता हुआ, सिजदे करता हुआ, तेरी कोई नमाज कामिल नहीं हुई, क्यों, ये तीन चीजें तू पैदा नहीं कर सका नमाज में, एक खुशू, आजजी और क्या, ये होती हैं, तभी तो कहा ना होती हैं, मतलब क्या है तीन चीजें, कि तू नमाज पे मेहनत ही नहीं करता, तूने इतनी बड़ी चीज को ठप्पा मारा है, बस तू इसको नमाज में लेते अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ये हो तो गई ना, पढ़ तो नहीं, हो तो गई ना। तो पहला स्टेज तो नमाज पढ़ो, फर्स्ट तो यही है ना कि नमाज पढ़ो, और पढ़ने के बाद दूसरा स्टेज क्या है कि नमाज को नमाज बनाओ, नमाज जो कामयाबी की तरफ हमें ले जाए। खुशू की मिसाल मैं आपको दे देता हूं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला के ज़माने में एक शख्स थे, जहर नूरानी ज़माना था, तो बहुत बड़ा ज़माना था। आप ये देखें कि मिजाज क्या थे, यानी वो समझे थे ना इन बातों को, उनका तस्वर था कि मैं नमाज है क्या चीज़। मैं एक छोटी किसी साहबी की मिसाल नहीं दे रहा, एक शख्स की मिसाल दे रहा हूँ, साहबी को मिल जाएंगी, लेकिन मैं बताऊँ मिजाज क्या था उन लोगों का, नमाज का क्या समझते थे वो नमाज को। टरखाने वाली नमाज नहीं थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह का ज़माना था, एक शख्स थे और अमीर आदमी थे, और अमीर आदमी जैसे होता है, अब आज भी अरबों में ये होता है कि वहाँ उन्होंने अपने जो फार्म बनाया होता है उसमें चले जाते हैं, वहाँ जगहें बनाती हैं, बच्चों के साथ ले जाते हैं, हमारे इत्तेफाक को एक दो शेख के साथ जाने का, अपनी बीवी से ले जाते हैं, उन्होंने फार्म बनाए होते हैं, वहाँ खजूरें ख़ास तौर पर खजूरें रखते हैं, खजूरें ताज़ी तोड़ते हैं और खाते हैं, तो देखने बड़ा मज़ा है उनके साथ, बुद्धू लोग तो दावत देते थे इत्तेफाक हुआ जाने में, मदीना मुनव्वरा में। मैंने सुबह हम हदीसों में पढ़ते थे चीज़, आज भी मिजाज इनका वही है। हाँ, छुट्टियों के बाद चले जाते हैं अपने गांव के अंदर, जाने के बाद खजूरें के बाग लगे होते हैं, ताज़ी खजूरें निकलती हैं और काटते हैं, बल्कि काट के सीजी बना रहे हैं, खजूरें खा रहे हैं, औरतें एक तरफ हैं, मर्द एक तरफ हैं, पीछे तरफ बैठे हैं, कहवा पी रहे हैं, तो इतना लुत्फ है सुबहान अल्लाह, क्या ज़माना होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आज भी अरूंगा ये चीज़, तो बड़ा लुत्फ आया देख कर। तो ये वो अपने बाग में खड़ा है, ठंडी हवा चल रही, तो बुधों की जिस तारों का रोका, तो उसने जहाँ अपनी नमाज खींची हुई है, नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। इबादत करते करते जो है उसके मौसम था खजूरों का और सीज़न था उसका, उस वक्त मतलब सीज़न भी तो आदमी फिर थोड़ा तवज्जो होती है दुनिया की तरफ, तो सीज़न था, तो उसकी नमाज़ पढ़ते पढ़ते इत्तेफाक से नज़र जो है खजूरों के गुच्छों पे पड़ गई, रोते धोते नमाज तो पढ़ ली उसने, की नमाज नहीं है। क्यों? कद अफलहल मोमिनून वाली बात नहीं बन सकी, ये तो खाशून हुआ ही नहीं, आँख उठ कैसे गई मेरी, कुछों की तरफ कैसे तभी चली। अच्छा हम अपना मियार देख लें, जन्नत के खरीदार हम बैठे हैं, ज़रा तसव्वुर कर लें कि हमें किस कदर मेहनत की ज़रूरत है, किस कदर मेहनत की ज़रूरत है आखिरत में जाने के लिए। इस पर नहीं कि बस नमाज हमने पढ़ ली, तो जब नज़र पड़ी तो वो रोने लगा बैठ गया कि मैं क्या करूँ, मेरी तो नमाज ख़राब हो गई, हम जो हज़ारों वस्फे कोई नहीं यार, अभी तो पढ़े, फिर अगली पढ़ने से नहीं, हुआ कैसे कैसे हो गया, सीधा हो गया। हज़रत उस्मान का ज़माना था, अब हेड के पास जा रहे हैं, आम आदमी को हेड क्या होगा, उनका क्या मिजाज होगा नमाज का, जब उनके पास गया कहते क्या बात है क्यों रो रहा है, तो ये बहुत अजीब आज मेरे साथ तमाम लोग नमाज का फौत हो गई, कहते नहीं जी, कज़ा हो गई, कहते नहीं जी, क्या हुआ, उसने वाक़ा बताया, ना फौत हुई ना कज़ा हुई, खुशी चला गया, क्यों कि मेरी नज़र पड़ गई, तब मुझे उसमें लुत्फ आया देख कर कि गुच्छ थे। हाँ, तो उस्मान का क्या हाल होगा, आंसू जारी हो गया उनके, उनको अपनी फिक्र पैदा हो गई कि मैं स्टेज पे भी मैं भी हूँ, सुभान अल्लाह, वो रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं, वो भी, हम तो कहें दीवाने सब कहते हैं ना आजकल लोग ऐसे दीवाने पागल हो गए, वो भी रो रहे हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब जो शख्स था वो भी रो रहे हैं, खामोश, तो कहते हैं मैं तो एक ही चीज़ समझाऊँ क्या, कि जिस दुश्मन ने मेरी नमाज का खुशी लूटा, इस दुश्मन को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, ये सारा बाग जो मेरा है बमाए इस सीज़न के बमाए खजूरों के, मैं खुदा के वास्ते में इस सदके को कबूल फरमाएं और मैं सदका देता हूँ। है जरूरत एक नमाज की कीमत, नफिल नमाज की कीमत, क्योंकि वो शख्स था वो उस चीज़ की तैयारी करना चाहता था कि मेरा ऐलान किस पर हो, कद अफलहल मोमिनून में मेरा ऐलान हो जाए। बड़ी ये है इंसान का ईमान। उधर भी हज़रत उस्मान ने कहा चलो छोड़ छोड़ क्या देना, बच्चों को कहाँ से खिलाएगा यार, तो तबाह हो जाएगा, अब तो सीज़न है अगले से, आधा दे दे आधा रख दे, वो यार चल थोड़ा सदका निकाल दे, आजकल तो बड़े हैं ना माशाल्लाह मसले देने वाले, ले लो लेके दे दो, इसका कोई सूद का नुकसान नहीं, दे दे ले लो हज़ारों नुकते निकाल रहे हैं, भूल जाते हैं कि कुरान कह क्या रहा है, इसका जुर्म कितना बड़ा है या नहीं, बस कहीं ना कहीं से हमने अपनी चीज़ें निकालनी है, किस तरह से उसको जायज़ ही किया जाए उस चीज़ को। नहीं, तकवा भी तो कोई चीज़ है, फतवा है लेकिन तकवा भी तो कोई चीज़ है या नहीं, सोचिए आप, खबरदार तकवे पे ज़िंदगी गुजारो दोस्तों। तो क्या हुआ, कोई फतवा नहीं, कोई फतवा वहाँ नहीं चला, तकवा चलता था, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत उस्मान ने सेकंड नहीं लगाया उसकी इस बात पे, क्योंकि हो सकता है वो शैतान पे वर्गा मारे या वो कुछ सोचने लगे, सोचने से पहले उसी वक्त खड़े खड़े उसको नीलाम कर दिया, सिर्फ 500 धर्म के अंदर पूरा बाग खजूरों के साथ बेच दिया। और फिर बेचने उसी वक्त वो सारा 500 धर्म जो था उसका सदका भी उसी वक्त कर दिया। करने के बाद दोनों सिजदे में गए, अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह ताला इतना बड़ा बोझ तूने हमारे, खुशी देखें आप दोनों की, हमारे जिस्म से निकाल दिया, हमारे नमाज कबूल हो गई। क्या अफलहल मोमिन, पढ़िए कितने दफा आयत पढ़िए ना, ये आयत पढ़ने के बाद ही आदमी आगे कुरान पढ़ ही नहीं सकता, यहां तो तफसीरें खत्म नहीं होती कुरान की, चैप्टर ही नमक थे, जो तफसीरें चलती हैं तो मैं खत्म ही होने का नाम नहीं, आज फला आ रहे हैं समझ नहीं के तफसीर। मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम इस आयत के बाद इंसान हिल जाता है, कहता करूं क्या, यही सोचने लगता। बाकी तो छोड़ो यार, कुरान की बात, पहले सवाल जो हमारा है नमाज का, उसकी मेरी कितनी तैयारी है। खाशून तो इसका मतलब यह हुआ कि इतनी सख्त तैयारी की जरूरत है, जैसे वो इंसान कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा हो पास होने की, और उसको पर्चा मिल जाए सवाल ये, और सवाल पे पूरी मेहनत करे, तो ये इतना बड़ा सवाल है खाशून वाला, खशियत को पैदा करना इतना बड़ा सवाल है कि जिस पे इंसान सारी जिंदगी तैयारी करनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं है, समझ आई बात। तो आप जो हैं इसीलिए आए हुए, ये जो मेरे पीछे लगे हैं ना आप, जिक्र 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 इस मतलब समझा करें, जिक्र 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 नहीं, ये अल्लाह वालों के जो कोर्सेज होते हैं ना, इनके कोई रिजल्ट और माने होते हैं इन चीज़ों, वजह उसकी ये है मेरे भाई हो, वजह उसकी ये है। मैं मुख्तसर बात पेटता हूँ क्योंकि बहुत सारी हदीसें जहन में आ रही हैं और बात लंबी है, लेकिन मैं समेट के फिर अगर इसमें इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। बात असल ये है कि खशियत आती क्या है, खशियत का मुकाम क्या है, खशियत का मुकाम दिल से है, किससे है, आजिज़ी का मुकाम किससे है, दिल से है, तवज्जा का मुकाम किससे है। आप जो कहना अल्लाह होकर हाथ तवज्जा नहीं करेगा नमाज की तरफ, आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान, पता ही नहीं क्या कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तवज्जा होगी इस तरफ, मैं कहता हूँ आदमी वहीं पागल हो जाते हैं। रब्बुल आलमीन खशियत के साथ आजिज़ और तवज्जा के तरफ अल्लाह से मुखातिब है वो शख्स, और हालत है नमाज में जिसमें आप हिल भी नहीं सकते, क्या हालत होगी साथ में बताए, क्या हालत होगी सोचिए। यहां कोई फर्क नजर आता है कि यहां आप तजवीजें निकालने खड़े हो जाए और ऊंचा नीचा देखने शुरू जरब जबर, यहां तो आदमी गुम हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और फिर मालिक यौमिद्दीन, तवज्जा लाए जरा और यौमिद्दीन का नक्शा खींचे, क्या है कौन किस वक्त को इंसान बात कर रहे अपने रब से, बिल्कुल मैं गलत रास्ते पे डूबा हूं अल्लाह ताला, बिल्कुल नंगा खड़ा इंसान के सामने पूरी त्वचा। और सुने हदीस एक और मेरे ध्यान में आ गई, बड़ी प्यारी क्या खूबसूरत हदीस है, इसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तक तू मुतवजा रहेगा अल्लाह की तरफ, अल्लाह भी तेरी तरफ तवज्जा करते ही रहेगा। क्या हदीस, जिस वक्त तू तवज्जा कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ऊपर से जवाब देता है कि हाँ बंदे मैंने तेरी तारीफ सुन ली, मैं तस्तम मुतवज्जा। ये डायलॉग उस वक्त चलते हैं कि जब खशियत हो, खुशी हो और तवज्जा हो रब की तरफ, हुई ना नमाज, आपको समझ आते हैं मसले मसाइल, सुभान अल्लाह। ये कहां से हो रहा है सब कुछ, ना हाथ कर रहा है, ना जबान कर रही है, ना टांग कर रही है, ये तो सब एक चीज के महतहत चल रहे हैं कि जिस कदर दिल के अंदर नूर होगा खशियत का, सारे अज्जा जो है डूब जाएंगे नूर के अंदर, सब अज्जा डूब जाएंगे नूर के अंदर। क्योंकि हुक्म किसका चलता है, दिल का। जिसके दिल के अंदर होगी दुनिया और खराफात और ख्यालात और ये और बटरम और बस उसको आदत पड़ेगी नमाज पढ़ने की, तो उसके तो अज्जा क्या सोचेंगे, क्या बताएंगे, कुछ कर तो दिल कर रहा है सारा, कर तो दिल रहा है सारा कुछ, मात तो दिल से बननी है, खशियत भी दिल में आनी है, खुशी भी दिल में आना है, और तवज्जा भी दिल से निकलती है, दिल बातें कर रहा है अल्लाह ताला से, नूर कहां आता है। तभी तो कहते हैं कि जो बाज अल्लाह वाले बुजुर्गों ने दीन का है कि मैं अपनी हथेली पे जो देखता हूं अर्श तक देखता हूं, दुनिया मुझे अपनी हथेली पे तिल की तरह, तिल समझते हैं मौल जो होता है छोटा, उसकी मामी नजर आती है, सारी दुनिया से होगी उसके सामने कि अकवाल है अल्लाह वालों में, फजूल बातें नहीं है। वजह उसकी यह है कि वो आंख नहीं है बल्कि दिल इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है दिल कि दिल उनका जो है वो देख रहा है सब कुछ, मुतवज्जा हो गया दिल असल की तरफ, हकीकत की तरफ। और वो छोटी क्यों नजर आ रही है आप सुने, कि जिस वक्त दिल इंसान का बन जाता है वो इतनी नूरानी और बड़ी चीज है कि पूरी कायनात उसके आगे एक नुक्ता बन जाता है। इमाम उनका दिल है, तभी तो देखते हो वो दिल से देख रहा, दिल तो मुकाबले में अल्लाह ताला कहते हैं दिल एक ऐसी जगह है कि जहां कुछ नहीं कहीं नहीं समा सकता, समा सकता हूं तो मोमिन के दिल में समा सकता हूं, क्या प्लेस होगी वो, तो वो उसकी जगह वो बन जाती है, तो हर चीज छोटी हो जाती है उसके सामने। वो कोई माहौल नहीं कर रहा है, गलत नहीं कह रहा, हमें क्या पता वो क्या बात है, वो कह रहा मैं क्या मजबूर हूं कि मेरे दिल जो है वो इतना बड़ा हो गया कि हर चीज दुनिया की जो सारी छोटी नजर आती है मुझे, सब मेरे सामने कुछ भी नहीं रहा, बदल गया उसके शो। तो मैंने तुम्हें किस पे करनी है दोस्तों, नमाज पढ़ने पर इंशाल्लाह, और फिर किस पर, खशियत लाने पर, और खशियत के लिए किस पे मेहनत करनी पड़ेगी मुझे बोलो, किस पर, दिल पर। दिल हमारा नहीं है, दिल अल्लाह है, और दिल की मेहनत के लिए अल्लाह ने क्या बताया, किसको चमकाओ, रगड़ो, इसमें से वस्त निकालो, ख्यालात निकालो, साफिस निकालो। अभी और हदीसें आ रही हैं इसकी, इंशाल्लाह के टाइम बताऊंगा आपको क्या दिल की इसमें किस तरह ख्यालात और थॉट्स कहां तक लेके इंसान को जाता है। तो ये है मेहनत, जो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के जिक्र की तरफ आए, सीरियस लें इसको, समझे ना कि हम दिल बनाने के लिए आए हैं। मैं जब हजरत साहब के पास गया रहमतुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पे नूर और नूर करे, तो बड़े मजे से बात फरमाया कि भाई तुम आए हो मेरे पास, ना कोई ना कश्फ है, ना कोई करामात है, ना कोई खेल तमाशा है, तो फिर कुछ भी नहीं है, तो पहले सोच लो आए किस लिए हो, तो देखें कि भाई सोच तो सही, तू आया मेरे पास क्यों, या ना कश्फ है ना करामात है, ना मेरे पास कुछ है, ना मैं कोई अल्लाह का वली हूँ, ना मैं कोई दरवेश हूँ, हाँ मुझे एक काम करने के लिए कहा गया, मैं काम कर रहा हूँ, तो तू मेरे पास किस लिए आया है बंदे, मैं तुझे नहीं जानता, तू क्यों आया। तो इधर भी आसिफ फारूकी थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तैयार करके भेजा था, मैं भी वो मकसद लेके नहीं घूमा था, मैं भी बहुत परेशान हाल था अपनी ज़िंदगी से, दौलतों से तंग आ चुका था, मसनूई ज़िंदगी से तंग आ चुका था, दुनिया का कोई कोना नहीं था जिसकी मैंने सैर नहीं कर ली, हर कौन से वाकिफ हो गया था, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी जान नहीं पड़ा, हर इलम मेरे पास मौजूद था, मैंने आसमानों के इलम पढ़े, जियोलॉजी पढ़ी, जियोग्राफी पढ़ी, सियासत पढ़ी, समझे ना, मैं दुनिया से तंग तारीख था। मैं कहा वाह अल्लाह वाले तूने भी क्या सवाल किया, फिर जवाब भी सुन मेरा, इधर जहाँ के मैं कहा हजरत बात तो सर एक ही है, कहाँ क्यों आए हो, वल्लाह ही पहला मेरा सवाल था उनके साथ, तभी तो बात बनती है दिल के अंदर, इंसान कोई प्लान तो हो ना, जब कहीं जा रहा हो गोश्त की दुकान पर जाते हैं, पता था मैंने लेग का गोश्त लेना है, शोल्डर का लेना, ठक जाके बोलते हैं आदमी वहाँ खड़े, सोचते हैं कभी आप, यार मुझे मैं क्यों मुर्गी लेने आया था यार, या चिकन था या लेग थी, आज क्या नहीं सीधा जाएगा, सब पता है आज पकाना है क्या, एक चिकन दे दो, फला दे दो, फला दे दो, ठक ठक निकल जबान से। तो जब अल्लाह के पास जाया तो कुछ प्लान नहीं, क्या बेवकूफ़ आदमी, मैं भी प्लान पे घूम रहा था अपने, तो अल्लाह ने अड्डे पहुंचा दिए, मैं दूसरा, मैं जी सेकंड लगी उन्होंने ये सवाल किया, मैं फौरन जवाब दिया, फौरन जवाब दिया, क्यों आया, मैं दुनिया को छोड़ने आया, अल्लाह का जिक्र करूंगा और कराऊंगा, तीन उन्होंने एक सवाल के तीन जवाब दिए मैंने, अल्लाह की तस्दीक, ना मुझे जिक्र का पता था, ना कराने का पता था, अल्लाह ने कहा ये सादिक आदमी है, तो ये आदमी जो बैठा है ये काम यही करता है, ये तो जवाब नहीं दे सके, इसके जबान पर जवाबदारी कर दो। मैं आज तक सोचता हूँ कि वो मेरे मुँह से निकले कैसे, खुदा की किस्म मुसल्ले बैठो, तो पता चलता है एक ताकत है, जब इंसान की नीयत सही हो जाए तो अल्लाह ताला खुद असबाब पैदा कर देता है, नीयतें सही होनी चाहिए। जब मैंने ये तीन बातें ही कहते ये तो मैं काम करता हूँ, बच्चा बैठ जा, फिर कोई नहीं आया वहाँ नज़दीक मेरे और हजरत साहब के नज़दीक, उस दिन तो नहीं आया, शाम तक ईशा तक मैं तो हजरत साहब थे, उनका आया तो ठीक है बस, जी है तो काम तो यही है, फिर जिंदगी भर एंड ऑफ द लाइफ मैंने हजरत से कोई सवाल ही नहीं किया, तू नहीं आती थी, ये दुआ कर दो, फलां कर दो, ये ताबीज दो, कोई सवाल नहीं, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर, उठते नहीं है हाथ इस दुआ के बाद, खत्म बस, बाकी हसबुनल्लाहु निमल वकील, जो भी चाहे अल्लाह के दरबार में दुआ करो, किस्सा खत्म, जो मिलना था अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया हमने हजरत से, ना हमें औलाद चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना कारोबार चाहिए, ना फसल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह चाहिए था, अल्लाह मिल गया। वो क्या चीज थी, किस पे मेहनत थी? कहा कि अब दिल पे मेहनत कर, इसको चमका, तैयार कर इसको नमाज के लिए। किसके लिए? सिजदों के लिए, रुकू के लिए। वही तैयारी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, यही मैं आपको बताता हूं। और कोई तस्वो नहीं है, कोई सूफिज्म नहीं है, कोई हमारे पास चक्कर चकास नहीं है। जो यह है इसी नीयत से है कि मैंने जी दिल सही नहीं है। किस लिए दिल सही करना है? ये नहीं कश करामात देखने के लिए। दिल किस लिए सही करना है? नमाज सही हो जाए, सिजदा करना आ जाए, खुशबू पैदा हो जाए। अल्लाह, मुझे एक अदब याद आता है मदीना मुनव्वरा का। देखें लोग कैसे कैसे पैदा करते। एक रात मेरे पास आ गया, मैं एतकाफ में था। अलब कहते हैं अलब सूफी नहीं मानते, आया एतकाफ में, वो भी था बड़ा अमीर, कहीं में अरब था। मुझे कहता है हजरत रात का वक्त था, सब सोए हुए थे, एतकाफ का ज़माना था। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं कही ये तो बहुत अलग है। कहते ताल है ना, मुझे कहते इधर आ जाओ। मैं किधर जा रहा है, मैं कोई है ही ना पकड़ा, मैं किधर? कहता आ जाओ शेख, बहुत जरूरी बात। चलता चलते जहाँ अंधेरा था मदीन मस्जिद नबी में, वहाँ ले गया मुझे। कौन है? नहीं है मुझे क्या ना, उमर, मैं उमर हूँ। अनु अंत शेख और आप शेख हैं? मैं कहता मैं देख रहा था कष्ट में आपके पीछे बैठा हुआ। कहता मुझे तस्वब सिखाओ। मैं सोचा मैं सुना क्यों सिर्फ तस्वब क्यों तू सीख रहे? कहते एक वजह है, अब देखें सवाल। सुभान अल्लाह, इसी मजलिस के मजास में आपको सवाल कर रहा हूँ मैं। क्या उमर मुझे ये बता तू तस्वब सीखना क्यों सीखना चाहता है? कहता शेख मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सीधी बातों से करूँगा। हमने मुझे पता है कि अल्लाह वालों के पास से वही चीज़ मिलती है, और मैं देख रहा हूँ मुझे लगता है कि तू शेख है, तो मैं तुझसे ये सवाल करना चाहता हूँ। मैं क्या कि मैं तस्वब इसलिए शेख करना चाहता हूँ कि मेरी नमाज ऐसी हो जाए कि मैं अल्लाह ताला को देखना शुरू करता हूँ। और रोने लगा, सिर्फ कहता है अल्लाह गवाह है, उंगली करके अरबों का हाला कि मैं तो सिर्फ अल्लाह की खातिर अल्लाह से एक ही चीज़ मांगता हूँ कि तुम लोग वो चीज़ तैयारी कराते हो कि मैं मुझे नमाज पढ़नी आ जाए, ऐसी नमाज, मुझे नमाज से बहुत मोहब्बत है। वो कहने लगा और रोने लगा। बस सिलसिला पर हमारी दोस्ती का चल पड़ा। तो मतलब देख कोई बात है ना, तो आप और मैं फिक्र करें इस चीज़ की कि कल हमसे जो कामयाबी हमारी जो होगी किस चीज़ से होगी? नमाज। अल्लाह का वली को यह बनना है के लिए हम कोई विलायतें लेने की थोड़ी आए हैं। आप सुन रहे होंगे सब, हमारे सारे माशाल्लाह शागिर्द सुन रहे होंगे सारी बातें। होश करें और तो मर्द अपनी नमाजों को सही करें। जब हम नियत को सही करेंगे तो यही जिक्र हमारे कलूब को उस तरफ लेके जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी होगी उस चीज़ की। तो जो लताइफ जिक्र के स्टेजेस आपको दिए जाते हैं, और पहला ही सबक जो आपका है लतीफ़ा कल्ब जो मैं आपको देता हूँ उंगली रख के, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा सबक है कि अगर इस दिल से सदके साथ आदमी अपनी नमाजों की तरफ तवज्जो करके और मुराकबात शुरू कर दे तो खुदा की कसम सिजदों के अंदर आपको जिक्र महसूस होगा कि सिजदा चल रहा है। तवज्जो बिल अल्लाह कर देगा आपका कल्ब। ये एक मजाक तो नहीं है बैठ कर जिक्र करते, समझे मेरी बात?